और इसी तरह बागे सूरह जुमर के बाद सूरह मोमिन शुरू हो रही है, दोनों का जोड़ मिला देते हैं। सूरह जुमर में मिलावट और आमेजिश से पाक खालिस तौहीद का मुतालबा था, अब सूरत मोमिन में तौहीद वाले के साथ क्या होगा, बंदे मोमिन की कहानी आने वाली है, और साथ ही साथ तौहीद के साथ आखरत को मानने का मुतालबा। सूरत जुमर में जन्नतियों की बात थी, सूरत मोमिन में अल्लाह की तीन शानों का जिक्र अभी शुरू में आने लगा, पहली आयतों में, जिनके साथ ताल्लुक रखने वाले कल इंशाल्लाह जन्नतों में दाखिल किए जाएंगे। आइए देखते हैं, नाम सूरत का है मोमिन, 85 आयत है। यहाँ एक बड़ी अहम बात आ गई, इस तावीज को नोट कर लीजिएगा। हामीम से शुरू होने वाली सात सूरतों में से पहली सूरत सूरत मोमिन, ऐसी सूरतों के मजमुए को हवामीम कहते हैं। सूरत मोमिन, हामीम सजदा, फिर इसी तरह से सूरत जुहरफ, दुखान, शूरा, आकाफ और जासिया, ये कुरान के हवामीम है और इनकी बड़ी खूबी है। बस ये कह ले कि ये जन्नत के बाग हैं जिनमें चरते चुगते खाते पीते गुजर जाइए। इस सूरत का एक दूसरा नाम गाफिर भी है, पहली आयतों में आ जाएगा। ये उस दौर में नाजिल हुई जब हिजरत हबशा हो चुकी थी, मुशरिकीन कुरैश इक्तदार के नशे में चूर थे, इसलिए इनको हामान और कारून की मिसालें देकर जुल्म और सितम से मना किया जा रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहस मुबाहस से मत करो। इसमें एक सच्चे मोमिन का किस्सा बयान करके ईमान की ताकत और मुझे है हुक्म अज़ां और हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ, ये सारी बातें सुझाई जा रही हैं। तकरीबन 10 नबी के इर्द गिर्द का दौर है। अगर सारी चीज़ों को समअप कर दें तो सूरत मोमिन का बुनियादी थीम कायनात की निशानियों के सिवा तारीख के दलाइल पर गौर व फिक्र करते हुए दावत को कबूल करो, क्योंकि इसमें हम फिर दोबारा तारीखी वाकयात पढ़ने वाले हैं। इसी तरह बहस, जिद और फिरौनियत, इससे इज्तनाब की हिदायत है, हलाकत की धमकी है, तौहीद साबित करने के लिए अकली और तारीखी दलाइल हैं। इसमें फिरौन की तरह हलाकत की धमकी दी जा रही है कि जैसे वो हलाक किया गया तुम भी कर दिए जाओगे, और इस्लाम की दावत के मुकाबले पे कल फिरौन ठहर सका तो आज अबू जहल और उसके साथी तुम क्या हो, लिहाजा फिरौनी रवैये तर्क कर दो, ये मशवरा है। इस सूरत के अंदर आपको जो खास चीज है, एक साल जब दुआ का टॉपिक था ना, तो इस पारे को मैंने शिर्क फिर दुआ का नाम दिया था। अगर आप सुनना चाहें तो उसमें आपको दुआ का बहुत मिलेगा, लेकिन तौहीद फिर दुआ दो मरतबा इसका तस्करा है, आयत नंबर 14 और 65 में। चार दफा मुजादिला का लफ्ज है, यानी झगड़े झगड़े झगड़े, जहां ये बातें आएंगी लोग झगड़ेंगे। तो आयत 4, 35, 56, 69 को नोट कर लें, कभी इनकी तफसीर सुन लीजिएगा। और तौहीद का 7 बार तस्करा है, आयत 14, 41, 42, 60, 62, 65 और 84 में। काफिर सरदारों के तकबर का जिक्र 5 बार है, यानी मतकबर हुक्मरानों को हलाकत की खबर दी जा रही है, आयत 21 और 82 में। दो मुख्तलिफ रहनुमा आपको इसमें मिलेंगे, एक बंदा मोमिन जो खैर की तरफ ले गया, और एक फिरौन जो कहता था कि मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगा लेकिन खुद भी डूबा और दूसरों को भी डुबो गया। अल्लाह के नबी सल्लम को सूरत के आखिर में 2 दफा सब्र और इस्तकामत की दावत दी गई है, ये पूरी सूरत का एक नटशेल है। अल्लाह करे कि हम इसमें से अपना हिस्सा पा सकें। आइए देखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रुकू नंबर 1, 1 to 9, ईमान वालों का बुलंद मर्तबा। हामीम, तंजीलुल किताब मिन अल्लाहिल अजीजिल अलीम, इस किताब का नाजिल फरमाना इस अल्लाह की तरफ से है जो गालिब और दाना है, गुनाह का बख्शने वाला, गाफिर ज़म्बी काबिल तौब। एक एक लफ्ज पे अल्लाह के प्यार आता है बंदे को। हमने पता नहीं किस अल्लाह के साथ बच्चों को जोड़ा, अल्लाह मारेगा, अल्लाह डांटेगा, अल्लाह आग में डालेगा, वो क्या कह रहा है, गाफिर ज़म्बी काबिल तौबी, गुनाहों को बख्शने वाला, तौबा को कबूल फरमाने वाला, सख्त अजाब वाला, इनाम और कुदरत वाला, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, इसी की तरफ वापस लौटना है। अल्लाह हमारे सारे गुनाहों को माफ कर दे, हमारे बच्चों के गुनाहों को माफ कर दे, हमारी नस्लों के गुनाहों को माफ कर दे। अल्लाह तआला की आयतों में वही लोग झगड़ते हैं जो काफिर हैं, बस इनका शहरों में चलना फिरना आपको धोखे में न डाले, कौम नूह ने और इनके बाद के गिरोहों ने भी झुटलाया था, और हर उम्मत ने अपने रसूल को गिरफ्तार कर लेने का इरादा किया और बातिल के जरिए झूठे बहस मुबासे किए ताकि इनसे हक को बिगाड़ दे। बस मैंने इन्हें पकड़ लिया, सो मेरी तरफ से कैसी सजा हुई। और इसी तरह आपके रब का हुक्म काफिरों पर साबित हो गया कि वो दोस्ती हैं। अब यहाँ फरिश्तों की दुआएं लेने का नुस्खा सुनिएगा और इस पे दुआ भी करिएगा कि अल्लाह हमें फरिश्तों की दुआएं लग जाएं। अर्श के उठाने वाले और इसके पास के फरिश्ते अपने रब की तस्बीह हम के साथ करते हैं और इस पर ईमान रखते हैं और ईमान वालों के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। कहते हैं, हमारे परवरदिगार, तूने हर चीज़ को अपनी बख्शिश और इल्म से घेर रखा है, बस इन्हें बख्श दे जो तौबा करें, जो तेरी राह की पैरवी करें, और तू इन्हें दोजख के अजाब से भी बचा ले। जरा आप भी ये दुआ मांग लें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें फरिश्तों की इन दुआओं का हकदार कर दे। और रब्बना वसी तकुल्ल शय रहमा व इल्मा फ़ाग़फ़िर लिल्लज़ीना ताबू। देखिए पिछली सूरत में क्या था, अल्लज़ीना असरफ़ू अला अन्फुसिहिम, यहाँ क्या ताबू वत्तबऊ सबीला का अगला दर्जा। पिछलों पे माफ़ी मांग ली, आइंदा के लिए अल्लाह के रस्ते पे चलने लग गए। वक़ीहिम अज़ाबल जहीम फ़ाग़फ़िर लिल्लज़ीना ताबू वत्तबऊ सबीला का वक़ीहिम अज़ाबल जहीम। कितना बड़ा तोहफा है तौबा का। लिखें जुमला, तौबा करने वाला अर्श के फरिश्तों की दुआएं पाता है। और आप कहते हैं फरिश्तों में सबसे आला मुकाम जो आगे जाके होने वाला है वो किन का है? अर्श के उठाने वाले फरिश्तों का। ए हमारे रब, तू इन्हें हमेश की वाली जन्नतों में ले जा। ऐसे तो है तू उठा उठा के माँ बाप भी नहीं दुआ देते, और अगर देते हैं तो देखिए या तो फरिश्तों की दुआएं हैं। कौन सी जन्नत है जिनका तूने इनसे वादा किया है, और इनके बाप दादों और बीवियों और औलादों में से भी इन सब ने जो नेक अमल किए हैं, यकीनन तू गालिब और बाहिकमत है, और इन्हें बुराइयों से भी महफूज रख। हक तो ये है कि उस दिन तूने जिसे बुराइयों से बचा लिया, इस पर तूने रहमत कर दी, और बहुत बड़ी कामयाबी तो यही है। बोलिए, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। ये देखिए अल्लाह तला की शान ने इस रुकू में गाफिर इज़्ज़म, ये पहला दर्जा होता है, अपनी रहमत से गुनाहों को ढांप लेने वाला। ये जो जम है ना, ये टेल को कहते हैं, दुम, गुनाहों का दुम छल्ला लोगों के पीछे लगा होता है, अल्लाह जाकर उसको अपनी रहमतों से छुपाता है। काबिल तौब, बेख्तियारी गलतियों को माफ करने वाला, शदीद इलेकाब, फासिकों को सख्त सजा देने वाला, और जिद तौल, अपने बंदों पर कसीर एहसान करने वाला। हजरत उमर फारूक को एक मौके पे खबर मिली कि उनके मुकर्रर करदा किसी गवर्नर में कुछ खराबियां हैं, ये वो जो कि नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने फौरन एक रुक्का लिखा और उसके ऊपर ये आयतें लिखी, कुछ भी डांट नहीं, कुछ नहीं कहा, इसको रैप किया, घुड़सवार के हाथ भेजा, उसे कहो कि फौरन ये उसको दो और उसका जवाब लेकर आओ। जो ही उस गवर्नर ने ये आयतें खोली, ये रुक्का खोला, ये पढ़ा, हिचकियां ले लेके रोया, फौरन हजरत उमर के पास आके माफिया मांगी। ये होता है औलादों को नसीहत करने का तरीका, कुरान की एक आयत। और माँ को आएगी तो बताएगी ना, फिर मौलवी साहब के पीछे भागना और दरस वाली बाजी के पास जाना है, क्या दुआ करूँ, क्या वजीफा करूँ, बच्चे को बताना चाहिए कि आपको ये दुआएं आती हैं। फिर आप देखिए आयत 7 में, यस्तग़फिरूना लिल्लज़ीना आमनू, फरिश्ते ईमान वालों के लिए बख्शिश की दुआ करते हैं। कितनी बड़ी बात है, हम एक दूसरे के लिए भी कर दें तो कबूल होगी, चले एक दूसरे के लिए दुआ करें। अब आपने की, दूसरे ने सुनी, क्या पता आपके और उसकी दुआ की कबूलियत में कोई रुकावट हो। दिल का कीना दुआओं को कबूल नहीं होने देता, आपसे तो ऐसी कोई उम्मीद नहीं, लेकिन रिस्क हराम, कोई किसी से 3 दिन से ज्यादा मिला ही नहीं, रूठा बैठा है, तो आप इंसानों की इंसानों की दुआओं के बीच में तो कितने वैक्स हैं, फरिश्ते तो मासूम हैं। तो क्या करना है, फेथ इन एक्शन, ऐसे तरीके से जिंदगी गुजारनी है कि इंसान तो इंसान, फरिश्तों की भी दुआएं मिले। असल जुदाई आखरत है, घर वालों के भी ईमान की फिक्र करनी है कि सब जन्नत में इकट्ठे हो जाएं। बड़ी बूढ़िया एक दुआ दिया करती थी, नानियां दादियां, अल्लाह तुम्हें अर्शों के भाग लगाए। ये दुआ अर्शों के भाग लगाने वाली दुआ, फरिश्तों की दुआएं। आगे रुकू नंबर 2, 10 से 20, क्यामत के दिन गफलत के पर्दे चाक हो जाएंगे। इन नल्लसीना कफरू युना दउना लमकतुल्लाह अकबर, बेशक जिन्होंने कुफर किया इन्हें आवाज दी जाएगी कि यकीनन अल्लाह का तुमसे बेजार होना इससे बहुत ज्यादा है जो तुम बेजार होते थे अपने जी से जब तुम ईमान की तरफ बुलाए जाते थे, फिर कुफर करने लगते थे वो कहेंगे हमारे परवरदिगार तूने हमें दो बार मारा और दो बार जिंदा किया, अब हम अपने गुनाहों के इकरारी हैं, तो क्या अब कोई राह निकलने की भी है? ये अजाब तुम्हें इसलिए है कि जब सिर्फ अकेले अल्लाह का जिक्र किया जाता तो तुम इनकार कर देते थे, और अगर इसके साथ किसी और को शरीक किया जाता तो तुम मान लेते थे। बस अब फैसला अल्लाह बुजुर्ग और बदतर का ही है, वही है जो तुम्हें अपनी निशानियां दिखलाता है और तुम्हारे लिए आसमान से रोजी उतारता है, और नसीहत तो सिर्फ वही हासिल करते हैं जो अल्लाह की तरफ रजू करते हैं। तुम अल्लाह को पुकारते रहो इसके लिए दीन को खालिस करके, वो काफिर बुरा माने। वो तो कहते हैं हमें पुकारो, हमसे मदद लो, हमें पुकारो मुश्किलों में, लेकिन अल्लाह कहता है तुम मुझे पुकारो। बुलंद दर्जो वाला अर्श का मालिक वो अपने बंदों में से जिस पर चाहता है वही नाजिल फरमाता है ताकि वो मुलाकात के दिन से डर आए। जिस दिन सब लोग जाहिर हो जाएंगे इनकी कोई चीज अल्लाह ताला से पोशीदा ना रहेगी। और एक सवाल होगा, जरा से इसको सोचिए, आज किसकी बादशाही है? लिमनिल मुल्कुल्योम। सोचिए क्या गुजरेगी फिरौन के दिल दिमाग पे, शद्दाद के, हामान के, नमरूद के? अल्लाह मैदान माशर में आवाजें लगवा रहा है, लिमनिल मुल्कुल योम, लिमनिल मुल्कुल योम। है ही कोई नहीं तो जवाब दे, फिर खुद ही कहेगा लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, फक्त अल्लाह वाहिद और कहार की। आज हर नफ्स को इसकी कमाई का बदला दिया जाएगा, आज किसी किस्म का जुल्म नहीं, यकीनन अल्लाह ताला बहुत जल्द हिसाब करने वाला है। तो कहिए कि हक तो ये है कि हक अदा ना हो, सारी जिंदगी सजदों में गिर के भी गुजार दी ना तो हक अदा नहीं होगा अल्लाह की इस बादशाहत का जिसके वो लायक है। और इन्हें बहुत ही करीब आने वाली के दिन से कियामत यानी मुराद है, आगाह कर दे, योम अल आजिफा, कियामत का एक नाम आ गया, नोट करें, पूरे कुरान में अब आगे बहुत सारे आएंगे। तो यहाँ देखिए योम अल आजिफा, क्या होगा उस दिन जब के गम के मारे दिल हलक तक पहुंच जाएंगे और सब खामोश होंगे, जालिमों का कोई दिली दोस्त होगा ना सिफारशी के जिसकी बात मानी जाए, वो आंखों की खयानत को और सीनों की पोशीदा बातों को खूब जानता है, और अल्लाह ताला ठीक ठीक फैसला करेगा। इसके सिवा जिन्हें ये लोग पुकारते हैं वो किसी चीज का फैसला नहीं कर सकते, बेशक अल्लाह ताला खूब सुनता खूब देखता है। दो आयात ईमान से मुतल्लिक, गाफिर टैन, जो दुनिया में अल्लाह से बेजार होते हैं क़यामत के दिन अल्लाह इनसे बेजार होगा। ये दुनिया में कौन बेजार होते हैं? ये फिर नमाज का वक्त आ गया, ये मौलवी साहब को क्या, ये मुल्ला की दौड़ और फुला फुला। और जब कभी अल्लाह पुकारे या ये लजीना आमनु, कहते बस अब दौरे कुरान सुन लिया, हम आगे कोई कमिटमेंट नहीं करेंगे, अल्लाह अल्लाह करके दिन गिन गिन के तो गुजारे हमने। तुम बेजार हो जाओ भाग जाओ, अल्लाह भी बेजार है। मुशरिक गैरों को पुकारता है, इधर वो रिवायत आती है जो बड़ी दिल को छू जाती है कि एक बंदा सिर्फ अल्लाह को पुकारता है पर उसको नहीं मिलता। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह वो बंदा तेरा अपना, 23वां पारा याद कर लें, इखलास, गैर भी नहीं है तेरा ही है, पुकार भी सिर्फ तुझको ही रहा है, 24वां पारा, इसको यकीन भी है कि तू ही देगा तो तू देता क्यों नहीं? कहा फरिश्तो जब ये सिर्फ मुझे पुकारता है उस वक्त जो मुझे लज्जत मिलती है ना मैं उसको महसूस करता। वो जैसे आप बच्चे को कभी जानबूझ के कैंडी नहीं देते ना, और उछले और ऊंचा दे और फिर आप और ऊपर उड़ो, फिर और ऊपर ऊपर आप हाथ करते रहते हैं, जब आप देखते ना वो शुरू होने लगा जरा मुंह खोल के, चलो पकड़ लो। अपने बच्चों से मांगना सीखे, ये है तौहीद फिर दुआ। और इसके बरक्स एक बंदा उसके दर पे गया, नहीं मिला, छोड़ो छोड़ो नहीं नहीं दूर, जैसे एक डॉक्टर से फायदा ना ना फिर लोग दूसरे डॉक्टर का पता पूछते हैं, लोग इस तरह पीरों का पता पूछते हैं, कब्रों का, दरगाहों का, नहीं उधर जाना नहीं, वो बहुत पहुंचे हुए, नहीं वो सिंध, वो ठट्ठा, वो पंजाब, वो फुलाम वाले, वो फुलाम वाले, कोई घोड़े शाह तो कोई फलाने शाह। अल्लाह फरिश्तों को कहते हैं जाओ इसकी बात जाके फौरन पूरी करो, मुझे घिन आ रही है इसकी आवाज से, मेरे सिवा से पुकारा है, जाओ इसको दे दो। जैसे वो किसी ने कहा कि कुत्ते को हड्डी भी मिल जाए तो खुश होके चला जाता है, इसको दे दो, लेकिन इससे मेरा एक इंतकाम है कि इसके दिल में यह आए कि मुझे बाबा जी ने दिए, ये कब्र वाले ने दिए, वहां गया था ना बेटा लेके आए हो, नऊज़ुबिल्लाह। अब सुनिए इस आयत को, 12 गाफिर मुशरिक अपने लिए निजात का हर रास्ता खुद ही बंद कर देता है। अल्लाह कहते तुम रूठो हम झूठे, तुम्हें नहीं मुझसे मांगना मुझे भी तुम्हें नहीं देना, तो फेथ इन एक्शन, कियामत को दूर समझकर अल्लाह से बेखौफ नहीं होना, अल्लाह ताला के लिए खालिस होकर इबादत करनी है। आगे रुकू नंबर 3 है, 21 से 27, तारीख से इबरत। अवलम यसीरु फिल अर्द, क्या ये लोग जमीन में चले फिरे नहीं के देखते कि जो लोग इनसे पहले थे इनका नतीजा कैसा हुआ, वो तो ताकत के एतबार से और जमीन में अपनी यादगारों के एतबार से इनसे बहुत ज्यादा थे, सुपर सुपर सोल पावर थे, ये मतलब है। बस अल्लाह ने इन्हें इन गुनाहों पर पकड़ लिया और कोई ना हुआ जो इन्हें अल्लाह के अजाब से बचा लेता। इस वजह से कि इनके पास इनके पैगंबर मौजजे ले लेकर आते थे तो वो इनकार कर देते थे, बस अल्लाह ने इन्हें पकड़ लिया था। यकीनन वो ताकतवर और सख्त अजाब वाला है। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी आयतों और खुली दलीलों के साथ भेजा फिरौन, हमान और कारून की तरफ, तो उन्होंने कहा ये तो जादूगर और झूठा है। बस जब इनके पास मूसा अलैहिस्सलाम हमारी तरफ से दीन हक लेकर आए तो उन्होंने कहा किसके साथ जो ईमान वाले हैं, इनके लड़कों को तो मार डालो और इनकी लड़कियों को जिंदा रखो, और काफिरों की जो हीला साजी है वो गलती में है। और फिरौन ने कहा मुझे छोड़ो कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम को मार डालूं, तकब्बुर से भरा हुआ। और इसे चाहिए कि अपने रब को पुकारे, मुझे तो डर है कि ये कहीं तुम्हारा दीन न बदल डाले या मुल्क में कोई बहुत बड़ा फसाद बरपा न कर दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं अपने और तुम्हारे रब की पनाह में आता हूँ, हर उस तकबर करने वाले शख्स की बुराई से जो रोज़े हिसाब पर ईमान नहीं रखता। ये होते हैं रौनत भरे हुक्मरान, दो आयते ईमान से मुतल्लिक, 25 काफिर जो किसी के लिए घड़ा खोदे खुद उसी में गिर जाता है। फिरौन ने क्या सोचा था और अल्लाह ने उसके साथ क्या मामला किया, खुद भी फिर पानी में ही डूबा, मूसा को पानी से निकाला और खुद उसी पानी में डूबा। गाफिर 27, दुश्मन के खौफ में अल्लाह की पनाह लेनी चाहिए, दूसरों की ठीक नहीं। आज उम्मत मुस्लिमा के ऊपर यह आयत फिट होती है, जिसको अल्लाह पर यकीन आएगा ना वो सिर्फ अल्लाह की तरफ देखेगा। हजरत उमर फारूक का दौर था, कहत पड़ गया, बहुत गुर्बत फैल गई। जब देखा कि लोग भूख से मर रहे हैं तो करीब की नॉन मुस्लिम रियासत वाले को खत लिखा कि कुछ मदद कीजिए, वो तो शुक्र करते हैं, वो तो चाहते ही हैं कि अब अल्लाह की बजाय उनसे मांगे। इतना बड़ा काफला मदद का उसने भेजा कि कहते हैं कि एक ऊंट मदीना में था तो आखिरी ऊंट उसके मुल्क में था, भर भर के दिया, चंद दिन बाद खत्म। इतने बड़े शहर में वो काफला क्या करे, खत्म हो फिर वही गुर्बत। अल्लाह ने एक बदरी सहाबी को जो अभी तक जिंदा थे ख्वाब में दिखाया कि अल्लाह के नबी आए और कहा उमर को क्या हो गया, बस चले गए। थोड़ी नाराजगी का अंदाज था, उस सहाबी ने जाकर उमर को सुना दिया ख्वाब। अब तो उमर को अपने ईमान की फिक्र पड़ गई कि अल्लाह के नबी ने मेरे बारे में ऐसे किया है तो मैंने क्या किया। मजलिसे शुरा बुला ली, बड़े बड़े उलमा दीन वाले आए, भाई मेरी गलती ढूंढो। कहा अमीरुल मोमिनीन आपकी गलती सलातुल इस्तस्का नहीं पड़ी और आपने एक गैर मुस्लिम हुकूमत से मदद मांग ली। कहा यस, ये तो ख्याल ही नहीं आया, चलो कल सारे खुले मैदान में चलो। और जब गए सलातुल इस्तस्का पढ़ी, इतना जल थल हुआ कि 2-4 दिन के अंदर मदीना का सारा ड्राउट खत्म हो गया। ये है आयत अलैहि सल्लल्लाहु बिकाफ नबदा। आज उम्मत मुस्लिमा को इस दरवाजे को खटखटाने की जरूरत है। फिर इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लम को जब किसी कौम से खौफ होता तो आप फरमाते आइए हम सब दिल से पढ़ते हैं, हर दुश्मन इस्लाम और हर दुश्मन मुसलमान को जहन में रखते हुए, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नाउज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। ए अल्लाह, हम तुझे इनके मुकाबिल करते हैं और इनकी बुराइयों से तेरी पनाह तलब करते हैं। यह सुनन अबू दाऊद की रिवायत है 153C। आपको तो ये लफ्ज़ नहूर के शुरूर तो हम समझते हैं ना, उर्दू में शार शुरूर शर, ये नहूर क्या है। हम तुझे इनकी गर्दनों पे रखते हैं यानी नहर कर दे इनको। अल्लाह अकबर कबीरा। फेथ इन एक्शन, अल्लाह की नेमतें मिलने पर सरकशी नहीं शुक्रगुजारी का रवैया अख्तियार करना है, अल्लाह तला की पकड़ से बेखौफ नहीं होना। रकू नंबर 4, 28 से 37, रजुलुन मोमिन। ये है वो रकू जिसकी वजह से ये सूरत भी मोमिन है और ये पारा भी है के हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। वकाल रजुलुम मोमिनुम मिन आलि फिरौन, और मजे के बदे के था फिरौन के घर वालों में से मिल मुसलमानों को गया। आज भी यही होना है, लिख के रख लें, जरा सीधे हो मुसलमान, अल्लाह ने उन्हीं में से किसी को मुसलमान करके आपका माविन कर देना इंशाल्लाह। अल्लाह को पता बंदे कमजोर है, और एक मोमिन शख्स ने जो फिरौन के खानदान में से था और अपना ईमान छुपाए हुए था कहा कि क्या तुम एक शख्स को महज इस बात पर कत्ल करते हो कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। रब भी अल्लाह का लफ्ज बहुत आ रहा है इस बारे में, यहाँ भी देख लें, और तुम्हारे रब की तरफ से दलीलें लेकर आया। अगर वो झूठा हो तो इसका झूठ उसी पर है, और अगर वो सच्चा है तो जिस अजाब का वो तुमसे वादा कर रहा है, और कुछ ना कुछ तो तुम पर भी आ पड़ेगा। अल्लाह ताला इसकी राहबरी नहीं करता जो हदों से गुजर जाने वाला और झूठा हो। ऐ मेरी कौम के लोगों, आज तो बादशाहत तुम्हारी है और इस जमीन पर तुम गालिब हो, लेकिन अगर अल्लाह का अजाब हम पर आ गया तो कौन हमारी मदद करेगा? फिरौन बोला, मैं तो तुम्हें वही राय दे रहा हूँ जो खुद देख रहा हूँ, और मैं तो तुम्हें भलाई ही की राह बतला रहा हूँ। नोट कीजिए, ओवर कॉन्फिडेंट है। तो मेरा तो कल्चर ही बड़ा अच्छा, पीछे पड़ा था अपने तरीकतुल मुस्ला की बात थी, जहाँ कहने लगा सबील अरशाद। इस मोमिन ने कहा कि एक मेरी कौम के लोगों, मुझे तो अंदेशा है कि तुम पर भी वैसा ही रोजे बद ना आए जो और उम्मतों पर आया, जैसे उम्मत नूह, आद और समूद और इनके बाद वालों का हाल हुआ। अल्लाह अपने बंदों पर किसी तरह का जुल्म नहीं करना चाहता। तो सबर की निगाह से सोचिए, सामने फिरौन और ये बंदा, ये है मुझे है हुक्मे अज़ा, ये है जाबिर सुल्तान के सामने कलमा हक कहना। अरे मेरी कौम, मुझे तुम पर क्यामत के दिन का भी डर है, जिस दिन तुम पीठ फेर कर लौटोगे, तुम्हें अल्लाह से बचाने वाला कोई ना होगा, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे इसको हिदायत देने वाला कोई नहीं। और इससे पहले तुम्हारे पास हजरत यूसुफ दलीलें लेकर आए, फिर भी तुम इनकी लाई हुई दलील में शक व शुबा ही करते रहे, यहाँ तक कि जब इनकी वफात हो गई तो कहने लगे कि इनके बाद तो अल्लाह किसी रसूल को भेजेगा ही नहीं। इसी तरह अल्लाह गुमराह करता है हर उस शख्स को जो हद से बढ़ जाने वाला शक को शुबा करने वाला हो, जो बगैर किसी सनद के जो इनके पास आई हो अल्लाह की आयतों में झगड़ते हैं। अल्लाह के नजदीक और मोमिनों के नजदीक ये तो बहुत बड़ी बेजारी की चीज है। अल्लाह ताला इसी तरह हर मगरूर सरकश के दिल पर मोहर कर देता है। फिरौन ने कहा, अब उसको तो गुस्सा आ गया, उसकी तौना पे पाँव पड़ गया ना। ए हामान, मेरे लिए एक बाला खाना बना, शायद कि मैं इनमें दरवाजों तक पहुंच जाऊं। अब जरा मजाक उड़ाने का अंदाज देखिए, जो आसमान के दरवाजे हैं और मूसा के माबूद को झांक लूं। देखिए जरा कैसा डिस्क्रेसिंग स्टाइल है। और बेशक मैं समझता हूँ कि वो झूठा है फन, और इसी तरह फिरौन की बदकिरदारियां इसे भली दिखाई दी और राह से रोक दिया गया, और फिरौन की हर हीला साजी तबाही ही में रही। हर दौर के हुक्मरानों का यही हाल होता है। एक फ्लाइट में एक रशियन सदर था और उसके साथ जो अखबारी नुमाइंदे होते हैं वो भी थे, कहीं ट्रिप जा रहा था। तो आप कहते हैं ना कि उस दौर का जो रशिया था खासतौर पे, वो तो एथियस्ट थे और सोशलिज्म और जो भी कम्युनिज्म आप जानते हैं, अल्लाह को नहीं मानते थे। जो नुमाइंदे थे ना साथ, उनमें से एक मुसलमान था। जो ही उस सदर ने उस मुसलमान को देखा ना, तो उसको एक मजाक सूझा, कहने लगा, अरे तो मुसलमान कहते हो अल्लाह ऊपर है, तो चलो जरा ऊपर आए हुए हैं देख ले, जाए जरा अल्लाह के करीब, अब हम होते तो परेशान शर्मिंदा। उसने कहा, जी प्रेसिडेंट, यस, जहाज की खिड़की खोलिए, आपको आगे ही दिखेगा। अल्लाह हुकर, ये है फिरौनियत, ये तकबर है। ईमान से मुतल्लिक 3 आयात, फातिर 28, जालिम बादशाह के सामने कलमा हक कहना सबसे बड़ा जिहाद है। गाफिर 30, दावते हक में इंतजार भी करना पड़ जाता है। और यहाँ यौमुत्तनात आय 32, चीखो पुकार का दिन, क्यामत का नाम। पीछे क्या बताया आपको, यौमल आजिफा, करीब आने वाला। तनाद नादा युनादी से नादिया, निदा मुनादी, चीख रहे हैं पुकार रहे हैं। कोई भी अल्लाह ना करे हादसा हुआ हो तो उस वक्त को जहन में लाकर सोचिए। फिर 35 आया था ईमान से मतलब, तकबुर और सरकशी से दिलों में मुहर लग जाती है। कज़ालिका यतबउल्लाहु अला कुल्लि क़ल्बिन मुतकब्बिर, दुआ कीजिए कि दिलों के अंदर से बड़ाई निकल जाए। फेथ इन एक्शन, दीन के किसी मामले में बगैर दलील के बात नहीं करनी, तकबुर और सरकशी से बचना है। अब कुछ लोग कहते हैं कब्र का अजाब नहीं है,